आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विधानसभा में पेश किया 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर हुआ हंगामा। नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर की चर्चा कराने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोडीन सिरप से प्रदेश में नहीं हुई है किसी की मौत। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15,189 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मिर्जापुर, हरदोई और गौतम बुद्ध नगर सहित 9 जिलों में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां। और प्रदेश में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।
मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है। इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य मुख्य बातें हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। खासतौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.10 करोड़ रुपए और गन्ना और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य मुख्य बातें हैं।
विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इसके बाद सपा के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सपा सदस्य अतुल प्रधान द्वारा कोडीन सिरप का मामला उठाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि कोडीन सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है।
कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है, 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फार्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है।
संतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा में कल ही वंदे मातरम पर भी चर्चा शुरू हुई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम की विशिष्टताओं और इसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति ना रहे बल्कि हम सबके लिए भविष्य का संकल्प भी बने।
वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यह हम सबके लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है, यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे।
विधान परिषद में विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षण संस्थाओं से अधिक बिजली बिल की वसूली और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। पुरानी पेंशन बहाली के समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मानपाल सिंह यादव के प्रश्न पर सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है। बिजली बिल वसूली के मामले पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें तय करता है, वहां पर अपील की जा सकती है। वहीं किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। लखनऊ जंक्शन पर निर्माण कार्यों के कारण प्रदेश और पड़ोसी राज्य बिहार से जुड़ी कुछ प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर जंक्शन इंटरसिटी अब 5 जनवरी 2026 तक लखनऊ जंक्शन के स्थान पर केवल ऐशबाग तक ही चलेगी। छपरा से चलने वाली छपरा लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 4 जनवरी 2026 तक अब लखनऊ जंक्शन के स्थान पर केवल गोमती नगर स्टेशन तक चलेगी। लखनऊ जंक्शन से चलने वाली लखनऊ जंक्शन छपरा एक्सप्रेस 5 जनवरी तक लखनऊ जंक्शन के स्थान पर अब गोमती नगर से चलाई जाएगी। गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस 5 जनवरी 2026 तक ऐशबाग के स्थान पर केवल गोमती नगर तक ही चलेगी। वहीं ऐशबाग से चलने वाली ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस 5 जनवरी 2026 तक ऐशबाग के स्थान पर गोमती नगर से चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15,189 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए मिर्जापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में 15,189 करोड़ रुपए की लागत से मेगा और सुपर मेगा श्रेणी में उद्योग स्थापित करने के लिए 12 औद्योगिक इकाइयों को LOC जारी की जाएगी। लखनऊ के बाद अब प्रयागराज डाक परिक्षेत्र में प्रधान डाकघर की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदेश का दूसरा जेंजी पोस्ट ऑफिस खोला जा रहा है। ये डाकघर छात्रों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। प्रयागराज के प्रधान डाकघर के प्रवर डाक अधीक्षक सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि जेंजी पोस्ट ऑफिस पूरी तरह आधुनिक होगा।
हमारी जो प्रयागराज पोस्टल डिवीजन है वो एक जनरेशन जेंजी के तहत पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफाई किया है जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। इस पोस्ट ऑफिस में हम लोग जो पोस्ट ऑफिस तो पहले से ही थी लेकिन उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन करके उसको जेंजी को जोड़ने के लिए वहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं और जो नेक्स्ट जनरेशन की डिमांड है उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस को डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे कैफेटेरिया होगी, पानी और छोटी मोटी चीजें, लाइब्रेरी से संबंधित चीजें होंगी जहाँ पे बच्चे अपने लीजर टाइम भी बिता सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी करके अपने को कनेक्ट कर सकते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती को आज प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि इस अवसर पर विधान भवन परिसर में हो रहे मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान किसानों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद करते हुए मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, शोषित, वंचित और किसान बंधुओं की समृद्धि में समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज और कल कहीं कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 25 से लेकर 27 दिसंबर के बीच कहीं कहीं घने से लेकर अत्यंत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी भी जारी की है। इस बीच कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण पूरे प्रदेश में जनजीवन प्रभावित है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से हवाई, रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव भी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विधानसभा में पेश किया 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर हुआ हंगामा। नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर की चर्चा कराने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोडीन सिरप से प्रदेश में नहीं हुई है किसी की मौत। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15,189 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मिर्जापुर, हरदोई और गौतम बुद्ध नगर सहित 9 जिलों में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां। और प्रदेश में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।